शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ। जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने महावाक्य में एक बहुत सुंदर बात कही कि अपनी खुश खैरापत का पत्र बाबा को लिखते रहा करो। अब प्रश्न उठ सकता है, वो तो उस समय की बात है जब साकार में बाबा बराबर थे, अब किसको लिखे, कौन पढ़ेगा, कौन उत्तर देगा। तो मुझे बाबा की एक बात याद आ रही है, जब बाबा साकार में थे तो हम सेवा केंद्र से जब चलते थे तो सभी बाबा की याद हमको देते थे कि निमित बहन जा रही है, हमारी बाबा को याद देना। मैं जब मधुबन पहुंची और मैं बाबा के कमरे में गई तो मैंने कहा, बाबा सबने आपको बहुत याद दी है। तो बाबा ने मुझे उत्तर दिया, बच्ची तेरे पहुंचने से पहले ही मुझे याद मिल गई। मैंने सोचा तो फिर मैं उठा के याद काहे को बोझ लेके आई, जब मेरे आने से पहले ही बाबा को याद पहुंच गई है तो फिर मैं याद किस चीज की लाई। तो जब मैं वापस जाने लगी तो हमेशा बाबा से याद पत्र लिखवाते थे और लिखवा कर ले जाते थे, याद पत्र सबके लिए गया है। लेकिन उस बार मैंने याद पत्र नहीं लिखवाया। मैंने सोचा जब सबकी याद पहुंच गई है तो बाबा की याद भी पहुंच जाएगी, मैं क्यों बैठ के लिखवाऊंगी। लेकिन उस समय मैं ये भी स्मृत हो गई कि बाबा की लाइन तो सदा क्लीन और क्लियर है, वो तो हर बच्चे की याद को कैच करते हैं। बच्चों की बुद्धि की लाइन तो इतनी क्लीन और क्लियर नहीं है जो बाबा की याद को कैच कर ले। सभी ने मुझे कहा, दीदी पत्र क्यों नहीं लिखवा के लाए, पत्र क्यों नहीं याद प्यार का आया। तो मैंने अपनी भूल बता दी कि ये कारण हुआ तो मैंने नहीं लिखवाया। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के यही महावाक्य थे कि बच्चे जैसे समाचार लिखते थे वैसे ही लिखना, जो खुश खैरियत का पत्र लिखते थे वो भी लिखना। सब बाबा के डायरेक्शन सब बच्चों ने सुने हुए। वास्तव में देखा जाए तो प्यारे बाबा ने बच्चों को ये स्पष्ट कर दिया है कि साकार बाबा के होते भी जब पत्र लिखते थे या व्यक्त बाबा को भी जब पत्र लिखते थे तो लिखत तो दादियों के हाथ में रहती थी, अव्यक्त होने पर लिखत बाबा को तो नहीं मिलती थी, दादियों के हाथ में होती थी। लेकिन जब बच्चे लिखते हैं, जो मन में संकल्प आता है लिखने से पूर्व वो बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा सदा बच्चों को कहते हैं, ये ना समझो आज बाबा नहीं है साकार में, किसको लिखे, कौन हमारी खुश खैरियत सुनेगा, कौन हमारे समाचार को पढ़ेगा। बाबा कहते हैं लिखत कागज रहेगा यहाँ, लेकिन जब तुम सूचित करते हो कोई भी बात तो बाबा के पास आपके डायरेक्ट पहुंचती। हाँ लिखत जरूर है, उस समय मन के भाव निकलने शुरू होते, वो लिखा कागज चाहे अपने पास रख लो, चाहे कुछ दिनों के लिए बात फाड़ के फेंक दो, लेकिन जब लिखते हो तो आपके मन के भाव बाबा कैच करते। तो सदा बाबा से लिंक हम बच्चों का रहता है, बाबा बच्चों के बिना नहीं, बच्चे बाबा के बिना नहीं। तो आज बाबा ने बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। और वाणी के प्रारंभ में ही बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने, अब हम भगवान के बच्चे बने हैं, पहले इंसान के बच्चे थे, ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आश्रय गुण नहीं होना चाहिए। औलाद किसकी, अभी कोई आश्रय गुण नहीं होना चाहिए, अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी, किसी भी बात में अलबेले नहीं बनना। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? दो बातें, निश्चय और नशा, सोचिए निश्चय किस बात का हो और नशा क्या होना चाहिए। तो बाबा ने स्पष्ट किया, क्योंकि मैं नाम तो सबके नहीं जानती जो मैं पूछूं, इसलिए मैं बाबा के ही सब महावाक्य सुनाती चली जाऊंगी। हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ये हमें निश्चय है, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे, ये निश्चय है। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, ये निश्चय है। आश्रय औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं, ये निश्चय है। अब नशा क्या है कि इससे भारी कोई वस्तु होती ही नहीं, जो दाता हमको दे रहा है इससे बढ़कर कोई बड़ी चीज, इससे भारी कोई चीज होती ही नहीं है, ये नशा रहना चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, अब सभी आत्मा रूपी बच्चे अपने ब्रकुटी रूपी तख्त पर विराजमान होकर प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते, सुनते ही नहीं समझने की कोशिश करते, बात समझाते। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते, घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है, अशांति से दुख भासता है, अशांति से शांति से सुख भासता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है, तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो कैसे निकलेगी? वो निकलनी है, आधा कल्प से जो अशांति है वो निकलनी है शांति के सागर बाबा को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग। आश्रय दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सच्चो कलयुग, किसको कहा जाता है, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे, तुम क्या कहेंगे? अब बोल सकते हैं। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। बोले कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और शाहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान है, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वे खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते सच्चों में है ईश्वरीय संप्रदाय, और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने, बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान है। वहां सच्चों में कोई अपने को ईश्वरी औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना एक बाप की है। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। भाई बहन हम कहलाते हैं जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे शिव बाबा के संतान हम उनकी औलाद है, और औलाद जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो हम सब आपस में भाई बहने हैं। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, हम सुखी होंगे। बरोबर सच्चो है सुख का धाम, और कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो, दुख धाम कौन सा है और सुख धाम कौन सा है। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, ये भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वे रचता है ना, नरक का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे? अगर वो नरक के भी क्रिएटर हो तो कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वे हमारा बहुत मीठा बाबा है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं, इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ये नशा है, इससे भारी प्राप्ति दुनिया में कोई हो नहीं सकती है। ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आश्चर्य अवगुण होना नहीं चाहिए। अपने उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ, देखते हो बाप सन्मुख बैठा है, देख रहे हो सभी, सन्मुख बैठा आत्माओं को सुना रहे हैं, न सन्मुख बैठा इन आंखों से दिखाई देता है, न हम बैठे आंखों से अपने को देख पा रहे हैं, लेकिन बैठे दोनों एक दो के सामने देखते हो बाप सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, स्पष्ट बता देते हैं रोज मैं आया हूं, और हम सब कहते हैं बाबा आए हुए, और वो बच्चों को स्पष्ट करते हैं मैं किस लिए आया हुआ हूं, आप सबको ले जाने के लिए। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है, ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप, अब ये तो है बेहद का बाप जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं, बुद्धि में वर्षा ही याद है, ये भी जानते हो, सभी जानते हैं। कौन सी बात, ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। अब हम कभी देखते हैं, हमने नाना नानी देखे, दादा दादी देखे, माँ बाप देखे, भाई बहन देखे, सब चले गए, अब हम रह गए तो हम भी तो चले जाएंगे, सब जाना है, किसने यहाँ रहना है सदा के लिए। तो बाबा ने कहा एक भी रहने का नहीं है, जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले बच्चों को डायरेक्शन, ये दुनिया गई की गई, उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सचमुच में कितना अथाह सुख रहता है वह बाप ही देते हैं, जो यहाँ की प्रॉपर्टी है वही सुखदाई है, उसी को भोगते हैं सचमुच प्रेता में। वे बाप देते हैं, यह तुम बाप के पास आए हो, यह बैठे तो बैठ तो नहीं जाओगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं, यह तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तुम क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए? गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो? हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बात बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना? ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं और लड़कर खत्म हो जाएंगे? खत्म कैसे होंगे? आपस में लड़कर ही खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे। यह हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहां तो बाप से भी लून पानी होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाबा को याद तो पढ़ते हैं ना। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। केवल बच्चे ही तो हैं, उन्हीं को तो बाबा ने हर समय याद करना है, और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं और हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। ये धंधा है बाबा का। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ क्या है? सिर्फ तुम बच्चे ही हो। बेहद बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुल गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। बाबा को मोह आ रहा है, तुम्हारे ऊपर बाबा को मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खिलाफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देखो क्या पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना? ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, खुश खराफत पूछते हैं। अब बच्चे उत्तर दे बाबा को। तुम युद्ध के मैदान में हो ना? कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो, साक्षों में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की होती है, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बातें नहीं होती है। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं है। और यहां योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्म इंद्रियों को वश करना, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना, टाइम बहुत थोड़ा है। कब से बाबा कह रहे हैं टाइम बहुत थोड़ा है, और देखते आ रहे हैं हालात कैसे होते जा रहे हैं, उसके अनुकूल वातावरण योग युक्त नहीं बनने देगा, हालात अपने में व्यस्त कर लेंगे। तो बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है, बुद्धि में रहते हैं ना, बाकी थोड़ा समय, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वह है हद की बात और ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है, उनका है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल, है उनका भी बुद्धि बल, है तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, ये एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं और तुम अच्छा पड़ा हुआ याद सीख रखा हुआ है, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। बुद्धि दोनों के पास है, काम बुद्धि का है, लेकिन एक बुद्धियां विनाश के कार्य में लगी हैं और एक बुद्धियां अपना ऊंचा श्रेष्ठ पद पाने में लगी। तुम बच्चे समझ सकते हो बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। भले कितनी भी अहल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम मुझे पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। ये हुए जैसे करनी घोर, मुझे जैसे समझाए करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तुम बाप को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़े यहां बैठ महल बनाएंगे, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वे करण करावनहार हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं, हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, जितना हो सके बाबा को याद करो और सबको भुलाते जाओ। याद करो, याद रखते हैं, भुलाते जाओ भूल जाते हैं, तो याद रहता नहीं, क्योंकि जब भूलते ही नहीं तो याद कहां से रहेगी। तो बाबा दोनों बातें जोड़ रहे हैं, जितना हो सके बाबा को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो, करो जरा ख्याल। क्या ख्याल करना है, कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाबा को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है और विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, ये सिद्ध करते हैं कि वो भी विकारी थे, उनको भी तो बच्चे थे। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहां है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानोगे फिर थोड़े बनोगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, पूरे मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते। बाप कहते हैं, मैं कल कर पाता हूं, कितना पुरुषार्थ कराता हूं, कितना खुशी में ले आता हूं। आप बाप से पूरा वर्षा लेने में माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जैसे वैद्य दवाई देता है तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहां भी मेरे बनोगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी, तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापिस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और जितना याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। याद करते करते तुम घर चले जाओगे, इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूं, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूं। एक चीज बाबा को बड़ी प्यारी, और प्यारी भी किस लिए कि बच्चे लेके उसका दुरुपयोग कर ले, इसलिए ये चाबी नहीं देता हूं, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन, इनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपने कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खिराफत का समाचार जरूर देना है। सुना सबने, अपनी खुश खिराफत का समाचार जरूर देना है, चाहे रोज पत्र लिखो, चाहे दो चार दिन के बाद, चाहे सप्ताह में एक बार खुश खिराफत तो लिखो, क्या हाल चाल है। बाबा कहता है ये डायरेक्ट कनेक्शन कहलाता है, लेकिन लिखत पत्र जरूर चाहिए मुझे। पत्र लिखो और बाप से रिस्पॉन्स भी पाओगे। वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। सर्व आत्माओं के दुआओं के अधिकारी भव, इसका स्पष्टीकरण है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं, और अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्त इशारा, अंतर्मुखी आत्माएं तीन प्रकार की भाषा के अनुभवी होते हैं। नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, संकल्प की भाषा। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाओगे, उतना इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। कौन सी भाषा? अंतर्मुखी स्थिति। और उसमें भाषा कौन सी चलेगी? तीन भाषाएं तो बाबा ने याद दिला दिया। और आज मामा के विषय में, जो मामा का विशेष पॉइंट है, चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प सिद्ध होने की शक्ति। मामा का चित्त बिल्कुल साफ था, वे अंदर बाहर समान रही। जो सोचा वही बोला और वही किया। चित्त में केवल एक बाबा को ही बसाया। कोई भी व्यक्ति या वस्तु ने ममा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। एक व्रता होने के कारण उनके संकल्प भी बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनते गए। इससे वे सिद्धि स्वरूप बन गई। हमें ऐसे हमें भी अपना चित्त शुद्ध साफ रखना है, एक व्रता बनकर रहना है। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य और आदरणीय मामा के गुण और शक्ति। कौन से गुण थे, कैसे उन गुणों से मामा शक्तिवान बने।
ओम शांति। आज हम सबको अचानक एक लॉटरी मिल गई। कैसे मिल गई? ना मन न चेत, आप सबकी तरफ से हमने दीदी को कहा कि आप आओ मुरली सुनाने के लिए। हालांकि शांतिवन में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें आप बिजी भी हैं, लेकिन बाबा के प्यार के कारण और आप सबके प्यार के कारण दीदी हमारे बीच में आई। हम दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि शांतिवन में अभी कुमारियों का समर्पण समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए आप भी उसमें विशेष कार्यक्रम में शामिल हैं। कुमारियों के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। हमारी अन्य दीदियां भी हैं, लेकिन हमें भी आपसे बहुत प्यार है। और जब भी आपको कहते हैं तो आप यहाँ मुरली सुनाने के लिए आते हैं, और बाबा के साथ के अनुभव तो आपके पास भंडार है, बीच बीच में सुनाते रहते हैं, और वो अनुभव हम सबको बहुत ही प्रिय और बहुत ही अनुभव कराते हैं। इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज तो देखो क्या कौन सा दिन है, आज है गुरुवार। हम सब ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन है। जब जब गुरुवार आता है हर ब्राह्मण के मन में ना जाने कितनी भावनाएं और बाबा से प्यार, बाबा से रूहान करते हैं। तो आज हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे, वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भाई बहने बाबा के पास वतन में जाएंगे भोग स्वीकार कराएंगे वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं क्या एक क्यों आती है, सब कहाँ है, सबको बैठना है। जब भोग लगता है तो बाबा कहते वतन में सब आओ। जैसे अभी दीदी बता रही थी कि बाबा को बताते बाबा फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है, तो हमको भी ऐसे कहते हैं हमारी याद बाबा को देना, बाबा को हमारी याद देना। बाबा कहते क्यों, वो नहीं याद दे सकते, वो नहीं आ सकते बाबा के पास, ये वाया वाया क्यों आते हैं। तो आज आपकी याद किसी की नहीं देंगे, ठीक है? दे या नहीं दे बोलो, कुछ नहीं बोलते, बोलो याद दें कि नहीं दें, बोलो। हम पहुंचेंगे ना, सब बोलो, हम बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, हम सब मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा से मीठी मीठी रू रूहान करेंगे। जिसको जो भी संकल्प है आज वे बाबा के सामने बैठ करके बाबा को सुना दे, तो बाबा उनके संकल्पों का वैसे भी रिस्पांस करते हैं और भी रिस्पांस करेंगे। तो सबको वतन में चलने का जरूर चलना है। बाबा तो बुलाते हैं लेकिन सबको बाबा के पास जाना है। तो भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की होगी और दो लाइनें बट्टी की बहनों की। एक तरफ यहाँ लाइन होगी बट्टी की बहनें, टीचर्स बहनें यहाँ पर आएंगी, और बट्टी की अन्य बहनें यहाँ पर जो कैमरा लगा यहाँ पर आएंगे। इशिता बहन और वारंगल की एक बहन अमृत पिलाएंगे, और उसके बाद दो लाइनें अन्य बहनों की होंगी। तो हमारी बहनें जो हैं बाबा की बहुत लाडली प्यारी हैं, और भाई भी तो उससे ज्यादा प्यारे हैं। जब अमृत पिलाते हैं तो भाई बहुत सिस्टम से लाइन में आते, बहनें जो हैं बाबा के प्यार में इतना खो जाती हैं, बाबा को घेर लेती और यहाँ पर भी सर्कल बना के खड़ी हो जाती है। इसलिए बहनों माताओं को ध्यान देना है, कोई यहाँ सर्कल नहीं बनाएगा, पांच मिनट में ही अमृत मिल जाएगा, तो लाइन में ही अमृत पीना है। इसलिए कोई भी सर्कल नहीं बनाएगा, सब लाइन में ही अमृत पिएंगे, ठीक है? अगर कोई इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको हम पीछे बिठा देंगे, ताकि बाबा की याद का और बाबा के साथ का गहरे अनुभव करे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? अभी चलते हम बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे, सुनने के बाद फिर सबको 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की, 2 लाइनें भट्टी की टीचर और बहनों की होगी, टीचर बहनें अथवा माताएं 2 लाइनें होंगी, और 2 लाइनें अन्य बहनों की होंगी जो उस तरफ होंगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, वारंगल वाले सभी हाथ उठाओ। दीदी आप सबको देखें, दीदी ये वारंगल के आए हैं भट्टी में, हाथ उठाओ, लंबा करो। दीदी आपको देख रही हैं और बहुत प्यार से दृष्टि भी दे रही हैं। ओम शांति।
जो दिल में देह धारण कर बाबा के पास जा।
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सत गुरुवार के दिन सबकी यादों को साथ लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर कमरा था। उसके चरफ उसके अंदर चारों तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हार्ट और उसके सामने काफी सारे हार्ट्स दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आया। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये सब आज क्या दिखाई दे रहा है? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप ने सभी बच्चों को अपने दिल के प्यार में समा लिया है और सब बच्चे बाबा के दिल के प्यार में समाए हुए हैं। और वो जो हार्ट्स दिखाई दे रहे थे उनमें सब बच्चे दिखाई देने लगे, हार्ट्स में बच्चे दिखाई दिए और वो दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर हार्ट चमकता हुआ सबको दिया। जैसे जैसे जिसके हाथ में पहुंचा, किसी के हार्ट में तो लाइट बहुत ज्यादा थी, किसी के हार्ट में लाइट कम थी, किसी के हार्ट के अंदर ऐसा छाया जैसा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, किसी के हार्ट के अंदर कुछ कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। तो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं, बाबा ने इसको ऐसा दिया, हमको ऐसा दिया। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। तो उसमें क्या था, एक तरफ ऐसे हार्ट्स थे, तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप को दिल से तो कहते हैं मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, लेकिन बच्चों के मन में कई कई बातों के अंदर जब अलबेलापन आता है तो वो जो प्यार की झलक है वो ढीली होने लगती है। फिर दूसरे प्रकार के बच्चे थे, वो कहने मात्र कहते हैं कि मेरा बाबा, लेकिन उसके साथ साथ कई बातों को अपने दिल में समाया हुआ है, जिस कारण से वो लाइट जगती और बुझती है। और तीसरे प्रकार के ऐसे दिखाई दे रहे थे जिनमें केवल एक बिंदी दिखाई देती थी और वो बिंदी इतनी पावरफुल थी, उसकी लाइट बहुत जबरदस्त थी। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने बाप को दिल में बिठाया और बाप सदा बच्चों को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन अभी भी बच्चे क्या करते हैं, अलबेलेपन के कारण जो बाबा बच्चों को दे रहे हैं वो प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं करते। दूसरा बात बाबा ने कही, कई बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं कि बाप को दिल में बिठाया है, लेकिन साथ साथ कई बातों को लेकर के उलझन में रहते हैं और कई बातों की कंफ्यूजन में रहते हैं, जिस कारण से बाबा सामने होते हुए भी बाप के साथ का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तीसरे बाबा ने कहा, वो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने बाप को यथार्थ रीति से जाना है और उस यथार्थ रीति से बाबा को दिल में बसाया है। बाबा ऐसे बात ही कर रहे थे तो पीछे से एक आवाज आने लगी, ठक ठक, और साथ में थोड़ा सायरन जैसा बजने लगा। तो सब बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं। तो बाबा ने, एक बच्चे कहते, ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, ये समय अपनी घंटी द्वारा सबको सूचित कर रहा है। समय की घंटियां छोटी बड़ी बजती जा रही हैं ताकि बच्चे अलबेलेपन से दूर रहे और समय के साथ साथ अपने को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा कभी छोटी घंटी बजती है, कभी बड़ी बजती है, और कभी भी धमाके के साइन दिखाई देते हैं तो बच्चों को बाहर के धमाके पर ध्यान न देकर के और बाहर के धमाल पर ध्यान न देकर के अपने अंदर बाप के साथ के ऐसे अनुभव इकट्ठे करने हैं जो जहां पर भी खड़े हो जाएं तो वहां देखने वालों को लगे कमाल है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आया है कि बच्चों को धमाल के समय के बीच में बाप की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा वाइब्रेशन फैलाना है जो हर कहे कि परमात्मा हमारा ही पिता है, परमात्मा के साथ से ही हमें अनुभूति होती है। तो एक चमत्कार करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है, इसलिए बच्चों को विशेष समय अपना इशारा दे रहा है। बच्चों को अलबेलेपन का भी उससे अपने को दूर करना है और दूसरा कई प्रकार की बातों की उलझनों से अपना किनारा करना है और बाप को अपने दिल में समा करके बाप के कर्तव्य का चमत्कार दिखाना है, तब ही बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बाबा ने फिर से बच्चों को एक हार्ट दिया गिफ्ट के रूप में। उस हार्ट के अंदर लिखा हुआ था मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा इस स्वरूप की स्थिति में रहें तो बच्चे बहुत अनुभव भी करेंगे और जो परिस्थितियां शासक चल रही हैं उन परिस्थितियों का भी बच्चों को उसको सहज पार कर सकेंगे, वो परिस्थितियां बच्चों को छू नहीं सकती हैं। फिर तो बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप जानते हैं कि आज बाबा के सामने कौन से बच्चे बैठे हैं, बहुत दिल से बाबा को प्यार करते हैं। बाबा ने कहा इनके साथ साथ विश्व के सभी बच्चे जो बाप के विशेष बच्चे हैं उनको भी बाबा ने आज वतन में इमर्ज करते हुए खास समय के बारे में ध्यान खिंचवाते हुए कि समय है एक तरफ प्रत्यक्षता, एक तरफ है समय का अपना कार्य करने का, परिवर्तन करने का। बच्चों का काम है प्रत्यक्षता और समय करेगा परिवर्तन का कार्य, इसलिए दोनों का बैलेंस रखते हुए बाप को भी प्रत्यक्ष करना है। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और फिर मैंने कहा बाबा कई बच्चों ने भोग लगाया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे और सबको ऐसे प्यार के झूले में झुला रहे थे और सबको याद दिया ओम शांति।